Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantaram. Namo Siddhanam. Namo Ayayanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Sauvasamum. यहाँ अभी हम सात तत्व जो है जिसको प्रयोजनभूत सात तत्व कहते हैं उन संबंधी कुछ यहाँ हम जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष नहीं है, परंतु वह पूर्ण निराकुल दशा है, अनंत सुखमय अपनी दशा है, अपनी अवस्था है। तो वह अवस्था प्रकट करना यह हमारा प्रयोजन है। वो कैसे प्रकट होगी, तो पहले में पहले मोक्ष तत्व को जानना जरूरी है जिसको प्रकट करना है। उसका उपाय है संवर और निर्जरा, इसलिए उन दो तत्वों को भी जानना जरूरी है। प्रकट करना है ना हमें, तो संवर निर्जरा कैसे होगी? आश्रय और बंध के अभाव पूर्वक होगी, इसलिए आश्रय और बंध को भी जानना जरूरी है। और हम अभी तक जीव और अजीव तत्वों में अपने और पर में ही विपरीत मान्यता कर बैठे हैं। अपना आश्रय लेना है तो अपने को जानना जरूरी है, और पर का आश्रय पर में अहम पने की बुद्धि छुड़ानी है, इसलिए पर क्या है, अजीव तत्व क्या है, उसको भी जानना जरूरी है। इसलिए मिनिमम पॉसिबल इतने तत्व तो जानना जरूरी ही है, इसके बिना हमारा जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होगा, दुख दूर नहीं होगा, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की बात तो छोड़ो, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो सम्यक दर्शन होने के पहले ही पहले प्रथम में प्रथम ये सात तत्व क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, उनमें हमारी क्या क्या भूल, यानी मान्यता में क्या क्या भूल। तत्वों में कोई भूल है ही नहीं ना, मोक्ष मोक्ष है, संवर निर्जरा है, उसमें क्या भूल होगी। जीव की उस संबंधी जो विपरीत मान्यता है, देव यानी भगवान और मुनि तो मुनि होते हैं, भगवान तो भगवान होते हैं, परंतु उनके स्वरूप के बारे में अपनी जो विपरीत मान्यता है, उल्टी मान्यता है, उल्टी श्रद्धा है, उसकी पहले बात करेंगे और फिर सही क्या है, विपरीत क्या है, उसकी भी यहाँ चर्चा चलेगी। इसलिए जो कहा है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ ये जो तत्व है, ये अर्थ है, पदार्थ जो है उनका सही श्रद्धान। सही का अर्थ क्या है, जैसे जिनेन्द्र भगवान ने बताया है वैसा श्रद्धान करना, उसको कहेंगे सम्यक दर्शन। और वैसा नहीं श्रद्धान करेंगे तो कहेंगे मिथ्या दर्शन। तो जैसा श्रद्धान उल्टा है तो ज्ञान भी उल्टा है, और वहां चारित्र ने आचरण भी उल्टा होता है, तो उसको हम कहेंगे मिथ्यात्व। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है एक ही समय में, तो उसको कहेंगे सम्यक्त्व। तो इसकी बात चलेगी अभी हमारी आगे। कल हमने देखा है कि ये प्रयोजन भूत सात तत्व होते हैं, ऐसा जब कहते हैं तो पहले में मिल तत्व क्या है, प्रयोजन का अर्थ क्या होता है, और फिर वो सात ही क्यों, ये बातें इतने ही प्रश्न अपने मन में उत्पन्न होते हैं। अभी अभी हमने देखा है ये सात क्यों है, तो क्यों जानना जरूरी है मोक्ष के लिए, वो सारे हमने देखे। प्रयोजन का अर्थ होता है हेतु, कारण, ये क्यों करते हैं, तो ये है प्रयोजन, तो सुखी होने के लिए, तो इसको कहते हैं प्रयोजन भूत सात तत्व। तत्व का भी हमने अर्थ देखा है, तत् यानी वह, त्व यानी उसका पना, वस्तु का जो भाव है उसको कहेंगे तत्व। अब इसके संबंध हम और भी अधिक जानकारी ले लेंगे। अभी आपका तो गुजराती पुस्तक में जो 19 नंबर का जो आपका प्रकरण है, हाँ, उसमें वो तीसरा पान 125 है ना, हिंदी में 98 पर हम देख रहे थे। हाँ, कल हमने इसको पढ़ा था, प्रयोजन यानी हेतु अर्थात कारण, उसके लिए दृष्टांत भी देखे थे, विद्यार्थी का, डॉक्टर का वगैरह वगैरह, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ अभी पढ़ेंगे। मिला बेन, परिमल बेन को मिल गया। हाँ, अप्रयोजन भूत बातें जैसी है वैसी जानना मानना अथवा विपरीत मानना, इस कारण से मिथ्या दर्शन नहीं होता। क्या कहेंगे? ये है पेन। तो मैंने पूछा आपको ये क्या है, तो आपने कह दिया ये पेंसिल है। तो इसको हमने विपरीत माना जाना, तो क्या इससे हमारा मिथ्या दर्शन हो गया? नहीं, क्योंकि ये कुछ मोक्ष के लिए प्रयोजनभूत बात नहीं है। इसको अपन रबर मानो या कुछ भी मानो, तो इससे हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। साइंस के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, मान लेते हैं अभी आजकल की जो कुछ साइंस डेवलपमेंट है, तो उससे कुछ हमारा मिथ्या दर्शन सम्मय दर्शन उससे कोई संबंध नहीं है। ख्याल में आया ना? तो प्रयोजनभूत जो तत्व है उसके बारे में जो हमारी गलत मान्यता है, तो हम उसको कहेंगे मिथ्या दर्शन। इसको नहीं जान रहे हैं, या कोई आपकी लौकिक बातों को नहीं जान रहे हैं, तो हमारा अज्ञान कहलाएगा। मिथ्या ज्ञान नहीं, ऑर्डिनरी अज्ञान कहलाएगा। हम उसके बारे में नहीं जान रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो इंजीनियरिंग की बातें नहीं जान रहा है, वो अपने फील्ड की जान रहा है, तो वो जाने नहीं जाने उससे सम्मय दर्शन मिथ्या दर्शन का कोई सवाल नहीं है। परंतु प्रयोजन भूत जो अभी अभी हमने देखे थे और अभी भी उसके और करेंगे गौर, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, ये जो प्रयोजन भूत तत्व है, इनके बारे में जो उल्टी श्रद्धा है, उल्टी यानी विपरीत, विपरीत ज्ञान है और विपरीत उल्टा चारित्र है मिथ्या, उसको हम कहेंगे मिथ्यात्व। तो प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में ये बात महत्व की है। तो कहते अप्रयोजनभूत बातें जैसी है वैसी जानना मानना अथवा विपरीत मानना, इस कारण से मिथ्या दर्शन नहीं होता। परंतु प्रयोजनभूत बातें यानी तत्व अन्यथा मानने से मिथ्या दर्शन होता है। चढ़ाला में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माही विपर्ययत्व। यानी जीवादि जो प्रयोजन भूत तत्व है उनमें सरधय यानी श्रद्धा करता है। कैसी? विपरीत श्रद्धा करता है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में इसकी मान्यता उल्टी है, श्रद्धा विपरीत है। तो वो विपरीतता क्या क्या है उसके फिर उन्होंने चढ़ाला में वर्णन किया है, उसकी बातें हम देखेंगे पहले। तो अपना प्रयोजन क्या है? हमने अपना प्रयोजन हर जीव का क्या है? दुख दूर करना। किसका?
अपना।
हाँ, अपना दुख दूर करना। उसके लिए अपना दुख दूर कर रहे हैं ना, तो पहले में पहले स्व कौन है ये जानना जरूरी है। हम अपना दुख दूर करना चाहते हैं और इलाज शरीर का करते हैं। ख्याल है ना? दुखी तो मैं हूं और इलाज कहाँ होता है? संयोगों में। बचपन में मैं साइकिल पर जाती थी स्कूल में, कॉलेज में वगैरह, तो एक बार क्या हुआ तो हमारे पीछे के पहिए में से हवा निकल गई। तो वहां तो दुकान होते ना छोटे छोटे साइकिल वालों के, वो हवा भर देते हैं। हम गए वहां पर, बोला अरे यहाँ ये हवा निकल गई है, हवा भर देना। तो उसने क्या किया, वो पंप लेके आगे के पहिए को लगाया और जोर जोर से हवा भरने लगा, और बार बार देखता है पीछे के पहिया, वो हवा उसमें भरी कि नहीं भरी। तो वो तो ऐसे ही फिर क्या किया, और जोर जोर से मारने लगा, तो क्या हुआ? फट गया, बस हो गया। यानी बीमारी कोई दुख कहीं और है और इलाज कहीं और करते हैं हम, ऐसी परिस्थिति हो गई कि नहीं हो गई? तो कहते हैं सर्वप्रथम स्व कौन है, यानी मैं कौन हूं, इसे जाने बिना स्व का दुख दूर कैसे होगा? जिसका दुख दूर करना है उसको पहले जाने तो सही। इसकी इसी में गफलत हो रही कि मैं कौन हूँ। अभी देखा ना अपने विपरीत मान्यता, विपरीत मिथ्यात्व क्या है, शरीर ही मैं हूँ। क्या होता है, दिखाओ आत्मा दिखाओ, नहीं तो हम मानेंगे नहीं। कौन कह रहा है, स्वयं जीव। जीव ही कहता है मैं हूं ही नहीं, यही शरीर ही मैं हूं। यानी जीव ने अपने जीवपने को खो दिया मान्यता में, उसकी मान्यता गलत है इसलिए जीव का अजीव नहीं हो गया, या शरीर कुछ जीव नहीं हुआ, वो उसकी मान्यता में उसकी कल्पना में है वो। तो सर्वप्रथम स्व कौन है, मैं कौन हूं, इसे जाने बिना स्व का दुख दूर कैसे होगा। स्व यानी मैं यानी आत्मा, आत्मा जिसको कहते स्कूल में हम लिखते हैं आत्मचरित्र लिखो, ऑटोबायोग्राफ। यानी क्या, या हम ऐसा ऐसे दिया जाता है, ये छाता है ना, छाता, छाते का आत्मचरित्र लिखो। तो हम वो छाते को मैं मानकर हम कहते हैं ना कि मैं यहाँ यहाँ इस फैक्ट्री में पैदा हुआ, फिर मैं तुम्हारे पास आया। तो मैं यानी आत्मा, जिसको आत्म कहते हैं। तो यहाँ स्व देखो, जब जनरल बात करनी है तो हम कहेंगे जीव जीव, और फिर जब अपने जीव की अपने ही बात करने तो कहेंगे ये आत्मा। स्व को जानने के लिए स्व और पर का ज्ञान आवश्यक है। स्व को आपा कहेंगे, आपा पर, ये ऐसे जो पहली भाषा है ना, ये जैसे ढूंढारी भाषा या पहले वाले हिंदी, तो उसमें आपा पर को जानो ऐसा कहते हैं। आपा पर ने आपा ने स्व और पर, ये आत्म शब्द है, आत्मा हिंदी शब्द है, और प्राकृत में अप्पा कहते थे। अभी साउथ में भी क्या अन्ना कहते उसके लिए, ये ऐसे से एक ही शब्द के कुछ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होते। तो आपा यानी स्व और पर को तो पर कहते ही है। तो पहली कंडीशन क्या है, स्व को जानना चाहिए। दूसरी बात, यानी स्व को जानना, केवल स्व को जानना, तो यह मैं हूं स्व और यह पर मैं नहीं हूं, यानी पर को भी जानना। इसलिए यह मैं नहीं हूं, स्व मैं जो हूं वही मैं हूं, बाकी जो है शरीर आदि ये पर है, ऐसे जानना। इसलिए दोनों को जानना, स्व को भी और पर को भी। दूसरी कंडीशन, स्व और पर को एक जानकर पर का उपचार करने से स्व का दुख कैसे दूर होगा। अभी हमने साइकिल की बात देखी थी, तो जिसका दुख दूर करना है उसको भिन्न जानना तो चाहिए। स्व पर को एक जानकर उपचार किसका किया, पर का, तो उससे तो अपना दुख दूर तो होगा नहीं। तीसरी बात, स्व से पर भिन्न है, दोनों अलग अलग बातें, एक ही जगह रहते हैं। जहां जीव के प्रदेश है उन्हीं प्रदेशों में यह अनंत अनंत कर्म परमाणु भी है और शरीर के परमाणु भी है। ये पुद्गल जो है, शरीर जो बना गई, वो तो रूपी है, इंद्रियों के द्वारा तो वही दिखाई देता है, वही जानने में आता है, उसी के स्पर्श रस गंध वर्ण हम जानते हैं, और उसी को मैं मान लिया, तो मैं ही स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, ऐसा मैं हूं ऐसा मान लिया उसे। तो कहते हैं स्व से पर भिन्न है, इसलिए पर में अहंकार ममकार करने से दुख ही होता है। ये अहंकार क्या होता है और ममकार क्या होता है, संस्कृत शब्द है ना, अहम यानी मैं, कार यानी उसमें मैं पने की बुद्धि, बुद्धि का अर्थ है मान्यता। शरीर पर है, इसमें अहंकार करना का अर्थ क्या है, यही मैं हूं ऐसी मान्यता, इसको कहेंगे अहंकार। और ममकार, मम यानी मेरा, एक तो होता है अहंकार यानी यह मैं हूं, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी खोटी बुद्धि, यह मेरा है। कोई कहेंगे ये मैं तो नहीं परंतु ये मेरा है, पर में मम पने के, जैसे घर को मैं कोई मानता नहीं है परंतु ये मेरा है, बच्चा अपने से भिन्न है अलग व्यक्ति ये तो पता है परंतु ये मेरा है, ये जो मान्यता है। तो कहते हैं स्व से पर भिन्न है, भिन्न है वो अलग वस्तु है, इसलिए परमे अहंकार ममकार करने से दुख ही होता है। क्यों होता है दुख? तो अलग होगा तो दुख होने का कारण क्या है? क्योंकि भगवान ने भी पर को पर रूप से जाना है, तो उसमें अहंकार ममकार करने का अर्थ क्या होता है? दुख का कारण क्या है? पर को जानना ये दुख का कारण नहीं है, पर है ये दुख का कारण नहीं है। ये टेबल यहां है ये थोड़े ही मेरे का दुख का कारण है, ये मेरा है मान लिया। अब इसका परिणाम तो इसके स्व के अधीन है। माना ये मैंने मेरा है शरीर, यह मैं हूं माना और मेरा है माना। अब ये तो मेरे कोई सुनने वाला तो है ही नहीं है, क्योंकि पुद्गल है। पुद्गल अपने स्वयं की योग्यता से हर समय परिणमन करेगा, उसके अनादि अनंत पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है, वो उसके अपने में परिणमता है। यदि मैं यही मैं हूं यह मेरा है मानते हो तो मेरी इच्छा अनुसार परिणमेगा तो अच्छा, और नहीं परिणमेगा तो ये मेरा दुख का कारण होता है। वो है काला और मैं चाहती हूं ये गोरा हो जाए, और न हो तो दुखी हो जाता है। ये तो अभी ठीक है, बच्चे होते हैं फिर युवान होते हैं तो अच्छा लगता है। अब बुढ़ापा, क्योंकि शरीर की है ना, वो तो शरीर की अवस्था है, तो बुढ़ापा शुरू हो जाता है तो क्या हो जाता है? अरे मैं बूढ़ा हो गया, इसी मान्यता शुरू होती है। तो मैं पहले सुंदर था अभी कुरूप हो गया मानता है, तो वो तो उसके लिए प्रयत्न चलते है। किसके लिए? मैं अभी जवान होने का सवाल नहीं, पर दिखू, दिखने के लिए तो है ना सारा, मैं गोरा दिखू, मैं जवान दिखू, तो इसके लिए, क्योंकि इसका परिणमन कुछ और होता है और हम चाहते कुछ और है, तो इसको मैंने मैं माना और ये मेरा माना, तो ये यही कारण है उसके दुख का। क्योंकि जो मैं नहीं हूं उसको मैं माना, जिसको हम मैं, जिसमें मैं स्थापित करते हैं उसके लिए उसकी जो बिहेवियर, उसके जो विचार है वैसे ही चलते हैं। क्योंकि शरीर को मैं माना तो फिर इसके लिए अनुकूलता हम ढूंढेंगे। यदि हमने आत्मा को ही मैं, जो मैं सच में मैं है उसको अगर हम मैं मान लेते हैं, आत्मा ही मैं हूं और ये पर है, तो अभी आत्मा के लिए जो कोई सुख का कारण है उसको हम ढूंढेंगे, है ना? आत्मा तो ज्ञान वाली वस्तु है, तो ज्ञान और सुख उसका स्वभाव है। दुखी क्यों हो रहे हैं? हम पर को अहम मानने के कारण दुखी हो रहे हैं। तो ये दुख दूर होने के लिए उपाय क्या है? स्व को स्व जानो, पर को पर जानो। तो पर को दूर करना कि नहीं करना?
पर तो वही है,
पर तो पर ही है, उसको क्या दूर करना? वो तुम्हारा थोड़ा ये दूर करेंगे। तो शरीर यहाँ पड़ा है, पड़े नहीं दो, अरिहंत अवस्था भी प्राप्त हो सकती है शरीर के होते हुए। अरिहंतों को शरीर है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। फिर भी उन्होंने परिपूर्ण वीतराग और सर्वज्ञता प्राप्त की है। तो शरीर को वही उसी प्रदेशों में रहने से अपना कुछ नहीं बिगड़ता है। बिगड़ा कब? शरीर ही मैं हूं ऐसा मान लिया तब बिगड़ा, तब तक तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। तो हम पहले में पहले किसको? नहीं नहीं, शरीर को हटाओ, शरीर को हटाने से कुछ नहीं होगा। या हम पहले में पहले क्या ट्राई करते हैं? हमको त्याग करना चाहिए, शरीर को तो अभी नहीं हटा सकते, तो घर को तो छोड़ना कि नहीं, पैसे को तो छोड़ना कि नहीं छोड़ना? आप कहेंगे अरे कम तो करो परिग्रह। तो कौन सा परिग्रह पहले कम करना? सोना चांदी वस्त्र पात्र, किसको कम करना पहले? हाँ, अंतरंग तो परिग्रह साबुत टकता है, और बाह्य में कुछ छोड़ने की प्रवृत्ति करना चाहता है, ये उसकी भूल है। तो पहले में पहले ये जो है, ये जो वस्तु के प्रति ममत्व भाव है, ये मेरे है, ये भाव तो छूटेगी नहीं, खाली वस्तु छोड़ने से कुछ नहीं। ये मैंने टेबल का त्याग किया, परंतु ये मेरी है मान्यता तो ठीक रही वैसी ही, जैसे अभी बात की ना 40 लाख मेरे है, तो मान्यता कायम रखी, तो मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, फिर मैंने क्या क्या छोड़ा, इसका ये अहमपना हो जाता है। इसको वो छोड़ने के जो क्रिया है उसी में अहमपना हो गया उसका। परंतु हम अगर पहले से ही जानेंगे छूटा ही है, हम कौन छोड़ने वाले, हम कहेंगे आपके यहाँ जो व्हाइट हाउस है ना, उसका मैंने त्याग किया। करना चाहिए कि नहीं, बोलो आप नीलाबेन, मुझे व्हाइट हाउस का त्याग करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप कहेंगे आपका था ही कब आप त्याग करने निकले। ऐसी बात है, ये एक पर है जो वस्तु है उसको पर है इतना स्वीकार करना है, हमें कुछ नहीं करना है। ये पहले में पहले पॉइंट है, ये जो मिथ्यात्व है अपनी अवस्था में है, अपना दोष है, ये कल्पना में है सारा। सही ज्ञान होने पर ये मिथ्यात्व इज नो मोर, तो हम कहेंगे उसका त्याग किया। ऐसे कोई वस्त्र है नहीं कि जिसको त्याग कर सके, समझ रहे ना? तो मिथ्यात्व का त्याग होना है ना, क्या है, सही जो वस्तु स्वरूप है उसको एक्सेप्ट करना ही मिथ्यात्व का त्याग होता है। तो हमने देखे थे कि सर्वप्रथम मैं कौन हूं निश्चित करना है, मैं और पर इसमें भी भेद ज्ञान, वो भिन्नता जाननी है। और हम जो पर का ही उपचार करने में लगे रहे हैं, तो हम स्व को जानेंगे, पर को पर जानेंगे, उनकी भिन्नता जानेंगे, तो हमारा दुख दूर होगा। ये आसान में आसान तरीका है, और हम सारा प्रयत्न है संयोगों को पलटाने में लगाते हैं। संयोग अपने हाथ में तो है ही नहीं है, तो जैसा जो हम कहते हैं प्रारब्ध, कोई उसको कर्म नाम देंगे, कोई दैव नाम देंगे, कोई कुछ भी नाम दो, परंतु वो तो अपने परिणमन से परिणमेंगे संयोग, और हम उसमें अपनी सारी बुद्धि सारी कोशिश उसमें लगा रहते हैं, और हमारा दुख कभी दूर ही नहीं होता। देखो इसमें स्व तत्व है जीव तत्व। पहले हमने सिंपल भाषा में देखा, स्व को स्व जानना है और पर को पर जानना है। इसमें स्व तत्व है जीव तत्व, और पर तत्व है अजीवादी तत्व। अजीवादी सारे ही जो है उसको पर तत्व में डाल दिया, जो मैं नहीं हूं वो सारा पर है। इन अजीवादी तत्वों में हम अब तक एकत्व यानी अहंकार, ममत्व यानी ममकार, प्रेम करते आए हैं। अजीवादी तत्वों में, अजीवादी में हम परद्रव्य और राग आदि देखेंगे, बाकी तो है ही नहीं ना, संवर ही जरा मोक्ष तो है ही नहीं है प्रकट। अभी क्या क्या है, मैं हूं, शरीर आदि पर है, आश्रय बंध भी है। हम अब तक क्या कर रहे हैं, ये मैं हूं और ये मेरे है, ये मान्यता अब तक चल रही। तो कहते उन्हीं में अहंकार और ममकार करते आए हैं और दुखी हो रहे हैं। किस कारण? स्व और पर का भेद नहीं जानने के कारण। तुम कहोगे अजीवादी तत्व मेरे अपने नहीं है, तो उन्हें जाने ही क्यों? क्या कहा, बस जीव तत्व को जानो, अपने को जानो, पर को क्यों जान रहे, अन्य तत्वों को क्यों जानना, इसकी जरूरत क्या है? उसका उत्तर है, पर को जानने में बाधा नहीं है, पर को अपना मानने में बाधा यानी नुकसान है। क्या कहा, पर को नहीं जानेंगे तो मेरे से भिन्न है कैसे जानेंगे? हमने पर को कैसा जाना, ये पर को जाना, पर को जानते रहो, ये अच्छा है बुरा है, इसका ये कलर नहीं होना चाहिए था, दूसरा कलर होना चाहिए था। हम पर को केवल जानने में नहीं रुकते, उसके साथ साथ उसके प्रति ये मेरा होता तो अच्छी चीज दिखी, अरे ये कितनी अच्छी है मुझे चाहिए, उसके साथ अपना राग चलता रहता है। तो पर को केवल यानी मात्र जानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो सबको जानते हैं, पूर्ण वितरागी है और सभी को जानते हैं, उनको तो कोई दुख है ही नहीं। और हम पर को कैसा मानते हैं जानते हैं, या तो वो अपना मानते हैं, मेरा मानते हैं, या मुझे चाहिए इस रूप में मानते रहते हैं। तो पर को जानने में बाधा नहीं, उसको अपना मानने में बाधा है। जानने के कारण नुकसान होता तो केवल ज्ञानी संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं फिर भी वे अनंत सुखी है। वो स्व को भी जानते हैं और संपूर्ण पर पदार्थों को भी जानते हैं। स्व तत्व को, जीव तत्व को यह मैं हूं ऐसा जानना, और पर को कैसा जानना, अजीवादी तत्वों को ये मैं नहीं हूं ऐसा जानना। हम किसी चीज को जानते हैं, तो ये पुस्तक है, ये टेबल है ना, तो तो पुस्तक पुस्तक है, पुस्तक टेबल नहीं है, ये पुस्तक पेन नहीं है, पुस्तक क्लिप नहीं है, सब जानते हैं। जानने का कार्य ऐसा होता है, ऐसे अपने को कैसा जाने, स्व स्व है ये पर नहीं है। और पर को जानते समय, शरीर को जानते समय, ये शरीर है ये पर है यह मैं नहीं हूं, ऐसा जानना है। शरीर को जानना छोड़ो, ऐसा कहां कहा, कैसे जानना है, यह मैं नहीं हूं ऐसा जानना है, ये मुझसे भिन्न है ऐसा जानना है। हमारा प्रयोजन है सुख प्राप्त करना, ये बारंबार प्रयोजन की याद दिलाते हैं। वैसे तो प्रयत्न हमारे सुखी होने के लिए ही चलते हैं, किसके लिए, शरीर को मैं मानकर यह ये जो मैं हूं इसके सुख, इसके लिए सुख चाहते हैं, इसलिए हमारे प्रयत्न सारे शरीर की अनुकूलता में जाते हैं। क्या ले? तो प्रयोजन हमारा क्या है, सुखी होना, दुख दूर करना। अनंत सुख मोक्ष में है, इसलिए मोक्ष तत्व का स्वरूप जानना भी आवश्यक है। मोक्ष कहाँ है, अपने में। लोग क्या समझे, स्वर्ग के ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। अच्छा, तो जहां बंध है वहीं पर मोक्ष होता है ना, जो बंधा हुआ है वही तो मुक्त होगा। तो यहां बंधन है अपने पर्याय में, तो मोक्ष भी अपने पर्याय में होगा। जीवों ने क्या मान लिया, कोई विशिष्ट प्लेस में वहां चले जाना वो मोक्ष होता है, ऐसे नहीं बात है। मोक्ष और बंध और मोक्ष तो जीव की ही अवस्थाएं हैं। जीव तत्व और अजीव तत्व द्रव्य तत्व है, इसको समझेंगे हम, और बाकी सब जो है वो अवस्थाएं यानी पर्याय तत्व है। देखो, जीव तत्व है ना मैं स्वयं, जीव द्रव्य की बात है ना वहां पर, तो वो जीव तत्व है जो वो द्रव्य तत्व कहेंगे। अजीव द्रव्य जो बाकी है, मेनली तो पुद्गल की बात है क्योंकि वही जानने में आती है, या मेरे से अन्य भी जो जीव है वे भी सब द्रव्य है, तो इसको कहेंगे हम ये द्रव्य तत्व। और बाकी जो कौन कौन से है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये क्या है, जीव की अवस्थाएं हैं। क्या ये अजीव की भी अवस्था है? हाँ, जब हम कर्मों की अपेक्षा से बताएंगे। ये तो गई जिनका प्रश्न था द्रव्य और भाव क्या है, तो उसमें जो द्रव्य आश्रव है, भाव आश्रव, ये द्रव्य आश्रव है, द्रव्य बंध है, द्रव्य संवर, द्रव्य का अर्थ है कर्मों का, कर्मों का बंध, कर्मों का आश्रव, कर्मों का संवर, कर्मों की निर्जरा और कर्मों से मुक्त होना, ये सारी कर्मों की अवस्था है, तो उसको हम कहेंगे ये अजीव की अवस्था है। कर्म अजीव द्रव्य है ना, जीव में, जीव का जो मोहराग द्वेष परिणाम है उसको जीव का आश्रव बंध वगैरह कहेंगे, जीव में जो वितरागता की उत्पत्ति हुई उसको संवर कहेंगे, जीव में वितरागता की वृद्धि उसको निर्जरा कहेंगे, और जीव में परिपूर्ण वितरागता होना, पूर्ण शुद्धि होना, उसको मोक्ष कहेंगे। तो जो पांच तत्व जो है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जीव में भी हो गए और कर्म में भी हो गए, तो हरेक के दो दो भेद है, कौन से, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव, भाव बंध द्रव्य बंध, भाव संवर द्रव्य संवर, भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, उसकी चर्चा आएगी अभी आगे। तो जीव और अजीव तत्व जो है वो द्रव्य तत्व है, और बाकी क्या है पांच, उसकी पर्याय, उसकी अवस्था है, उसको कहेंगे पर्याय तत्व है। जीव की भी अवस्थाओं में होगा और कर्मों की भी अवस्था में होगा, इसलिए हर एक के दो दो भेद बताएंगे। तो यहां हम देख रहे हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व द्रव्य तत्व है, अन्य सब तत्व उन्हीं की अवस्थाएं यानी पर्याय तत्व है, उन्हीं की यानी जीव की और अजीव की। बंध का अभाव होकर मोक्ष होने वाला है, इसलिए मोक्ष तत्व और बंध तत्व का ज्ञान जरूरी है। इसमें बंध का कारण है आश्रव, इसलिए आश्रव को जानना है। बंध क्यों होता है, तो तो आश्रव को बंध का कारण मानना है। तत्वार सूत्र में आठवें अध्याय में पहला सूत्र है, क्या है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इति बंध हेतवा, इन्हें बंध के हेतु कहा, इन्हें बंध का कारण कहा, इसलिए आश्रव कहा। हम तो ऑर्डिनरी मोह राग द्वेष कह देंगे आश्रव को, उसमें ये सब आ गए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनको बंध के हेतु इन्हें ये आश्रव कहा है इनको। तो कहते हैं बंध का अभाव होकर मोक्ष होने वाला, इसलिए मोक्ष तत्व और बंध तत्व का ज्ञान जरूरी है। इसमें बंध का कारण है आश्रव तत्व, इसलिए उसे जानना भी आवश्यक है। और मोक्ष का कारण इन्हें, मोक्ष का उपाय है संवर और निर्जरा, इसलिए उन्हें यथार्थ जानना भी जरूरी है। सात तत्व क्यों और उन्हें क्यों जानना, ये बात यहां बता दें। इस प्रकार ये सात तत्व हुए कि जिन्हें जानकर, पहले में पहले जानना कहां से, आगम से कहेंगे, उपदेश के द्वारा जानना करते हैं, हम उसके नाम सुनेंगे, उसका स्वरूप भी देखेंगे अभी, तो उन्हें जानकर यथार्थ प्रतीति करना। यथार्थ प्रतीति ने जैसे उनका स्वरूप बताया है वैसे ही श्रद्धा में, रुचि में ले लेना, वैसे विश्वास में ले लेना, उसको कहेंगे यथार्थ प्रतीति करना। ये ऐसे ही है, ऐसे हमें जब फील होगा तो हम कहेंगे ये यथार्थ प्रतीति है। यह सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। हम कहते ना श्रावक की आवश्यक क्या है, मुनि की आवश्यक क्या है, क्या क्या करना चाहिए, चाहिए वाली बात है ना। तो कौन सा आवश्यक कर्तव्य है? पहले में पहले सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति करना, उसके प्रथम उसको यथार्थ जानना, क्योंकि शास्त्र में से, आगम में से उसको सही रूप से जानना और वैसे उसकी प्रतीति करना। प्रतीति कब होगी? जब हम तत्वों पर बार बार विचार करेंगे और ऐसे ही है, ऐसे हमारा विश्वास, हमारी खातिरी हो जाएगी, तब उसकी प्रतीति हो जाएगी। अब इन्हीं तत्वों के नाम फिर से क्रम से लिख रही हूं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। हरेक के आगे तत्व तत्व लगा लेना, क्योंकि जीव द्रव्य भी है और जीव तत्व भी है। ये तो कुछ है नहीं, वो तो छोटे छोटे बच्चे भी ये नाम सीख जाते हैं। अब इसके जो नीचे का, इस पत्र के लास्ट पैराग्राफ जो है बड़ा वाला, तत्व किसे कहते हैं, प्रयोजनभूत तत्व कौन से और कितने हैं, तत्वों के नाम तथा लक्षण के बारे में विस्तृत चर्चा, इन्हें आने वाला क्या क्या विषय उसको बताते। प्रयोजनभूत तत्वों संबंधी जीव की अनादि से होने वाली विपरीत मान्यताएं, अनादि से क्यों, ये विपरीत मान्यताएं उसकी अग्रित मिथ्यात्व में भी चली आती। सात तत्वों में हेय, गेय, उपादेय तत्व कौन से है, यानी जो सात तत्व है उसमें हेय ने छोड़ने लायक, गेय ने जानने लायक, उपादेय ने आश्रय करने लायक या प्रकट करने लायक, कौन कौन से है उसकी चर्चा भी आने वाली है। सात तत्वों को जानकर उनमें छिपी हुई आत्मज्योति कैसे पहचाने, क्योंकि ये तो तत्व है, ये तो भेद है, तो इसमें अभेद आत्मा का अनुभव कैसे करें, यानी आत्मानुभव कैसा होगा, सात तत्वों को जानकर आत्मा का अनुभव कैसे होगा, ये जो बातें हैं, अर्थात स्व पर का भेद विज्ञान कैसे करें, ये जो बातें हैं वो सारी आगे आगामी आने वाले पत्रों में ये लिखी है। क्योंकि हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, श्रवण, श्रवण ने सुनना, वाचन करते हैं, वह शब्द ज्ञान करने के लिए नहीं अपितु आत्म ज्ञान करने के लिए कहते। हमें कोई शब्द नहीं सुनने, पढ़ने या याद करने, ये रटने से तो हम परिभाषा याद करेंगे, हमारा प्रयोजन क्या है, आत्मा का ज्ञान करना। ये शब्दों से हम आत्मा संबंधी ज्ञान कर रहे हैं, आत्मा संबंधी ज्ञान अलग है और आत्मा का ज्ञान अलग है। जैसे आपने आम लाया तो आम संबंधी ज्ञान हम ऐसे लिख देंगे आम के ऊपर, तो उसका स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? तो आम का ज्ञान यानी आम को चखेंगे तो आम का ज्ञान हो जाएगा। पहले भी ज्ञान तो कहेंगे क्या ये इतना आम इतना बड़ा होता है या ऐसा होता है, ऐसा दिखता है या ऐसा उसके आकार होते हैं, ये भी ज्ञान कहलाएगा। परंतु वो कैसा है? उस संबंधी ज्ञान है। परंतु आम को जाना कब कहेंगे? डायरेक्ट जब उसका हम अनुभव उसकी टेस्ट लेंगे तब। हाँ, वैसे आत्मा संबंधी ज्ञान तो हमें शास्त्र में से होगा, परंतु आत्मा का ज्ञान कब होगा, आत्मज्ञान कब होगा? तो जब हम आत्मा को जानते रहेंगे, उसके अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होगा, तब हम कहेंगे इसको आत्मज्ञान हुआ। तो हमारा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो आत्मज्ञान का है। ये तो हमें यहां मार्ग दिखाने वाले शब्द जो है वो बताने वाले हैं। आत्मा का ज्ञान तो आत्मा स्वयं करेगा, क्योंकि हम स्वयं आत्मा है और ज्ञान हमारे पास है, कहीं बाहर से लाना नहीं है। तो हमें अपने को ही जानना है तो कोई पराधीनता वहां है ही नहीं। पर को जानना है मान लेते हैं तो कुछ तो पराधीनता है ना वहां पर, वैसी तो बात यहां है ही नहीं है। तो इनका जो स्वरूप है वो अब यहां 20 नंबर के चैप्टर से यहां शुरू हो जाता है। देखो ये थोड़ा पढ़ते हैं, ये दूसरा पैराग्राफ। छह द्रव्य सात तत्व, यानी कौन कौन से विषय जानने जरूरी है? छह द्रव्य सात तत्व चार अभाव, छह कारक जिसको षट कारक कहते हैं, पांच भाव यानी जीवों के जो पांच भाव है ना, कौन कौन से? औपशमिक, शायिक, शाक्षमिक, औदयिक, पारिणामिक, निमित्त उपादान आदि। आदि में और फिर निश्चय व्यवहार वगैरह कुछ विषय, क्रमबद्ध पर्याय या पांच समवाय आदि का प्राथमिक ज्ञान होने पर शास्त्रों के अर्थ सहज समझ में आते हैं। जब तक वो ज्ञान नहीं है तो क्या कहना चाहते वो बात ख्याल में नहीं आती। शब्द तो हम पढ़ लेते हैं और पढ़ते तो अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ लगाते हैं। यदि इनकी प्राथमिक जानकारी हो तो फिर हमें शास्त्र का सही अर्थ लगा सकते हैं। जैसे कर्णान योग में तो सभी निमित्त की भाषा में, भाषा निमित्त की है, निमित्त की भाषा में सब ग्रंथ लिखे हैं। तो जीव ने कर्म को बांधा, कर्म ने, कर्म के उदय में जीव ने ऐसा किया, तो हम कहते वो कर्म ने सब कुछ कर दिया। तो ये निमित्त की भाषा होती है। जब हम निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझते हैं तो कहते कथन निमित्त से भले हो परंतु कार्य तो उपादान से ही होता है, निज शक्ति से ही होता है। फिर हमारी भ्रांति टल जाएगी। नहीं तो क्या होगा, ये कर्म के सारे नियम सुनते हैं पढ़ते हैं तो हमारी निमित्ताधीन बुद्धि और दृढ़ हो जाती है। निमित्त से ही कार्य होता है ऐसी मान्यता चलती रहती है, ख्याल है ना? तो फिर ये हमारे क्या करे, कर्म ने हमको सताया है, ये कर्म हमको कब छोड़ेंगे, ऐसी ऐसी मान्यता, ऐसी ऐसी भूल होती है। तो कोई द्रव्य पराधीन है ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, वो स्वयं अपनी योग्यता से परिणमता है। ये बात हम सही समझेंगे तो हमारी ये मिथ्या मान्यता चली जाए। तो जो शास्त्रों का सही अर्थ समझेंगे, उसका मर्म समझेंगे, तो उस संबंधी रस यानी रुचि बढ़ जाएगी। जब कोई बात ख्याल में आती है ना, समझ में आती है, तो अपूर्व आनंद भी होता है और फिर उसमें हम और ज्यादा उसमें अपना जिसके हाँ पुरुषार्थ यानी उसकी रुचि बढ़ती चली जाती है। हाँ, अब उसके एक पैराग्राफ छोड़ के आगे। यह सब पढ़ते समय एक बात का सदा स्मरण रखना है, मुझे अपने को पहचानना है। कोई भी विषय चलता हो तो उस विषय के द्वारा हम अपनी तरफ कैसे आ सकते हैं? छह द्रव्यों का विषय चलता है तो ये मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य हूँ। छह द्रव्यों में वो बात चलेगी, अनंत गुणों का समुदाय है, उसके सामान्य गुण है, उसके इतने विशेष गुण है, वो उत्पाद वे ध्रुवता वाला है, तो मैं भी ऐसा ही मेरे में है क्योंकि हर द्रव्य का वो सामान्य स्वरूप है। इस तरह से बारम्बार अपनी और उसके विचारों की धारा चलनी चाहिए। तो इन छह द्रव्यों में मेरा स्थान कौन सा है, तो मैं एक स्वतंत्र जीव द्रव्य हूं, परतंत्र नहीं हूं मैं। मेरा अस्तित्व कहाँ है? मेरे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में। कल बात आई थी ना। और मैं गुण पर्यायों से युक्त हूं, तो मेरी पर्याय दूसरा कोई पलटाए तो होगी कि नहीं होगी? तो कहते हैं द्रव्य ही उसको कहते हैं जो अनादि अनंत पर्यायों का पिंड है। ये द्रव्य में ही वो शक्ति है कि अपनी कौन सी पर्याय कौन से समय में करे। ये पर्याय प्रति समय पलटने पर भी मैं ध्रुव रूप से कायम टिका हुआ हूं। कौन सा गुण है?
अस्तित्व।
पर्याय हर समय पलटते हुए भी द्रव्य कायम टिकता है। पर्यायों का पलटना भी द्रव्य का ही स्वरूप है, वो उसका अनित्य धर्म है। और कायम टिकना भी द्रव्य का ही स्वरूप है, वो उसका नित्य धर्म है। कल बात आई थी ना नित्य अनित्य धर्म की। वस्तु स्थिति ऐसी होने पर भी, जीव ने क्या माना था अभी? वस्तु स्थिति ऐसे होने पर भी मैं एक जीव द्रव्य प्लस अनंत पुद्गल परमाणु। यहाँ कौन है? मैं तो एक जीव द्रव्य हूं और बाकी अनंत पुद्गल परमाणु है। ऐसे अनेक द्रव्यों की जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय, असमान यानी जो एक सरखी नहीं है, एक जीव द्रव्य और बाकी पुद्गल द्रव्य, इसको कहेंगे असमान। अकेले पुद्गल प्लस पुद्गल हो गए तो हम कहेंगे समान जाति के, और ये हम विभिन्न जाति के हैं, कहते हैं इंटरकास्ट। मेरी जाति जीव और इनकी जाति पुद्गल, इसको कहेंगे असमान जाति। और इनकी मिली जुली जो पर्याय है उसको कहेंगे असमान जाति द्रव्य पर्याय, अनेक द्रव्यों की मिली जुली अवस्था। उसी को यानी ये मनुष्य पर्याय है, उसी को मैंने स्व मान लिया है, मैं मान लिया है, इस कारण मैं मनुष्य हूं। अब उसके सारे प्रयत्न कैसे चले गए? मैं मनुष्य हूं और मुझे सुखी होना है, मुझे क्या करना चाहिए, तो उसकी लिस्ट अलग बन जाती। जब हम कहेंगे मैं जीव द्रव्य हूं, तो हमारे जो कुछ कर्तव्य की जो बातें होगी, करने जैसी जानने जैसी, तो वो बातें थिंकिंग अलग हो जाएगी। तो मूल में भूल कहाँ है? मैं कौन हूं ये मानने में भूल हो गई उसकी। तो इस कारण मेरे सुखी होने के प्रयत्न निष्फल रहे, व्यर्थ साबित हुए। तो अभी मैं कौन हूं मानने पर इसके कैसे प्रयत्न होंगे और वो कैसे सही होकर उसको सुख की प्राप्ति कैसी होगी, इस बात की चर्चा भी चलेगी हमारी अभी आगे। तो इसलिए ये जो सारे प्रयोजनभूत तत्व है उनका हम यहाँ अभ्यास करेंगे, इसकी बातें भी और चलेगी आगे। लो 2400 भगवान की जय।